Even Hindi, you know. दर्शन देखकर कुछ कथा अत्यधिक इच्छा प्रकट किए जाने पर प्राणान प्राण प्रत्यादित्यु शांतिपूर्वक जाते हुए शिव सदृश उठा सहित सदस्य पार्षद या अनुयायी अनुगह अधिकारी वैन्य राजा पितु इंद्रिय ईश जीवात्मा गुणानिव प्रकृति के गुणों से मानव प्रभाव चारों कुमारों को देखकर ऋतु महाराज उनके स्वागत के लिए आतुर हो उठे। अतः अपने पार्षदों सहित वे तुरंत इस तरह तेजी से उठकर खड़े हो गए मानो कोई बद्धजीव प्रकृति के गुणों द्वारा तुरंत आकृष्ट हो उठा हो। भगवद गीता 3:27 में कहा गया है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हमति मन्यते। प्रत्येक बद्धजीव प्रकृति के गुणों के एक विशेष मेल से प्रभावित होता है, फलतः बद्धजीव विशेष प्रकार के कर्म की ओर आकर्षित होता है और उसे करने के लिए वह बाध्य हो जाता है, क्योंकि वह भौतिक प्रकृति के पूर्णतः वश में होता है। यहाँ पर ऋतु महाराज की तुलना ऐसे बद्धजीव से इसलिए नहीं की गई है कि वे सचमुच बद्धजीव थे, अपितु इसलिए कि वे कुमारों के स्वागत के लिए इतने आतुर थे मानो उनके बिना प्राण निकल जाएंगे। बद्धजीव ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षित होता है जिनसे इंद्रिय तृप्ति होती है, उसके नेत्र सुंदर सुंदर वस्तुएं देखना चाहते हैं, उसके कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, नाक सुगंधित पुष्पों का रस स्वादन करना चाहती है और जिह्वा उत्तम भोजन चखना चाहती है। इसी प्रकार उसकी अन्य इंद्रियां यथा हाथ पांव पेट गुप्तांग मन भी भोग्य पदार्थों के आकर्षण से अपने को रोक नहीं पाती। इसी प्रकार ऋतु महाराज भी चारों कुमारों के स्वागत से अपने को रोक नहीं पा रहे थे। ये कुमार अपने तेज प्रकाशमान थे, फलतः न केवल राजा अपितु उनके अनुयायियों तथा सभासदों ने भी उन चारों का स्वागत किया। कहा जाता है कि संसार में समान रुचि वाले व्यक्ति एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। एक शराबी दूसरे शराबी के प्रति आकृष्ट होता है, इसी तरह साधु पुरुष के प्रति आकृष्ट होता है। क्योंकि पृथु महाराज सर्वोच्च आध्यात्मिक पद पर थे, अतः वे उसी कोटि के कुमारों के प्रति आकृष्ट हुए। अतः यह उक्ति सही है कि मनुष्य संगति से पहचाना जाता है।
कुमारों का स्वागत किया और पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से पीछे बढ़ा जाते हैं और शिक्षा दी। और आप ये भी पढ़ सकते हो कि किस प्रकार महाराज देना जो पीछे महाराज के पुत्र थे, किस प्रकार उन्होंने शासन किया। महाराज वेरा के शासन के समय प्रजा अत्यंत दुखी थी। क्यों क्यों दुखी थी? क्योंकि उन्होंने हर प्रकार के यज्ञ समाज में रुकवा दिया था और क्योंकि समाज ने हर प्रकार के यज्ञ रुकवा दिया था, उसके लिए परिणाम हुआ कि पृथ्वी पर लोग अत्यंत दुखी थे। सारे सागर सूख गए, पेड़ों में कोई फल नहीं था, पृथ्वी से कुछ अन्न नहीं आ रहा था और पूरी प्रजा अत्यंत दुखी थी। आज भी आप क्या देखते हैं समाज में, भारत देश उदाहरण के लिए इस समय जैसे आप चल जाते हो, ये सब बहुत कम बारिश आई है। वो कह रहे हैं कि भविष्यवाणी है कि दिस विल बी द हॉटेस्ट ईयर इन हिस्ट्री। ये 2015 पूरे विश्व में सबसे गर्म साल माना जा रहा है। इतिहास में सारे विश्व में अमेरिका ले रही, अमेरिका के कई इलाकों में वर्षा 3-4 सालों से नहीं आ रही है। कैनेडा के कई इलाकों में बारिश नहीं आ रही है और उसका क्या परिणाम है? और बारिश नहीं आए तो क्या परिणाम होता है? और उसे तो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यही से ये कष्ट इसलिए यह स्थिति है क्योंकि आज जो हमारे नेता हैं महाराज वेला के समान है। उन्होंने समाज में यज्ञ स्वादे में कोई रुचि नहीं रहता। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं 3 चीज़ों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। क्या है वो? यज्ञ, दाना और पशु। 25वें अध्याय गीता के भगवान कह चुके हैं कि अन्न की प्राप्ति होती है वर्षा के कारण। वैसा की प्राप्ति होती है जब आप यज्ञ करोगे या धर्म के नियमों का पालन। जब समाज में कोई धर्म फैलता है तो समाज में लोग धार्मिक शिक्षा का पालन नहीं करते, तो यही परिणाम होता है जो महाराज वेला के समय हुआ और जो आज हो रहा है समाज में। और ये समाज की स्थिति बिगड़ते जाएगी। रामा जी ने एक लेक्चर में कहा था कि कलयुग में आप बादल देखोगे ये सोचोगे बारिश आने ही वाली है, तो बारिश नहीं आएगी। ये स्वामी कलयुग ने मुझे कहा ऐसे देखना कि बादल आ रहे हैं सब खुश से बारिश आने वाली है, अंदर क्या परिणाम बारिश आएगी। तो यज्ञ की आवश्यकता है। तो पीछे महाराज हालांकि है सत्ता वैसा होता भगवान के अवतारों का वर्णन शास्त्रों में है और अवतारों के अनेक विभाग हैं। बिना अवतार पुरुषा अवतार, बिना अवतार सुखेंद्र अवतार, बिना अवतार। तो भगवान के अवतार होते हुए भी पीछे महाराज बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। पिछले अध्याय में ऋषि महाराज ने प्रजा को शिक्षा दी, ये शिक्षा हर नेता को देनी चाहिए। प्रजा को क्या कहा उन्होंने, भगवान के नामों का उच्चारण करा। तो इस अध्याय में हम पढ़ रहे हैं किस प्रकार ऋषि महाराज ने महाराज का स्वागत किया। महाराज जैसे जानते हैं लोग किसके पुत्र थे और उनकी कोई इच्छा नहीं थी कि ऐसा आश्रम में प्रवेश करने के लिए। हम भारत में सोचते हैं कि जब तक भी ऐसा आश्रम में प्रवेश नहीं करो जीवन असफल माना जाता है, कई लोग ऐसे सोचते हैं। बाबा जी ने महाराज को विनती भी की थी कि ऐसा आश्रम में प्रवेश करने के लिए प्रजा बढ़ाने के लिए, पर कोई रुचि नहीं थी। अपने योगी सिद्धियों द्वारा उन्होंने अपने शरीर को बड़े बड़े से रोक दिया। जब व्यक्ति छोटी उम्र का होता है, बच्चा होता है, तो भौतिक आकर्षण भी उस समय नहीं होता। तो कुमार जो थे रमा जी के पुत्र हैं और उनके पास ये सुविधा है, वो किसी स्थान में भी किसी स्थान की यात्रा कर सकते हैं। आपने अगर जाना हो तो आपको मोटर में जाना पड़ता है या हवाई जहाज में। तो कुमार जैसे पिछले श्लोक में आपने देखा है कुमार के पास ये स्थिति है कि बिना किसी मशीन के नारद मुनि के समान किसी समय भी एक स्थान से दूसरे स्थान, एक लोग से दूसरे लोग वो यात्रा कर सकते हैं। तो कुमार का सदा हरे कृष्ण, तो कुमार का सदा एक ही भाव रहता है। क्या भाव? भगवान का उपदेश है। तो ऋषि महाराज अपने अधिकारियों के साथ बैठे थे और ऋषि महाराज ने देखा महाराज आ रहे हैं, तो पृथ्वीराज तुरंत ही उठे अपने आसन से अपने अधिकारियों के साथ। क्या करने के लिए? महाराज का स्वागत करने के लिए और उनका आकर्षण महाराज के प्रति वैसे ही था जैसे कि बौद्धिक बौद्धिक व्यक्ति का आकर्षण है इंद्रशक्ति की सुविधा के द्वारा। बौद्धिक बौद्धिक व्यक्ति को अगर इंद्रशक्ति का मौका मिले तुरंत ही उसका लाभ उठाता है। तो कुंभ पीछे महाराज उनके अधिकारी जैसे उन्होंने देखा इतना प्रकाश कुमारा के चेहरे से, जैसे उन्होंने देखा कि कुमारा से आ रहे हैं तुरंत ही वो खड़े हो गए अपने अधिकारियों के साथ। क्या करने के लिए? उनका स्वागत करने। और बड़े एग्जाम्पली मैनर वाले तरीके से उन्होंने उनका स्वागत किया। हालांकि वो राजा थे, उन्होंने कुमार के चरणों को धोए पहले, और चरण को धोकर जल माथे पर डाले। आप भगवत में पढ़ते हो सुदामा ब्राह्मण जी का था। सुदामा ब्राह्मण भगवान के बचपन के मित्र थे, ब्राह्मण थे, इसलिए संतुष्ट थे हर स्थिति में। जो ब्राह्मण है वो कभी किसी को दोष नहीं देता। बहुत से समाज में तो हम एक दूसरे को दोष देते रहते, तुम्हारे कारण मेरी ये समस्या हुई, तुम्हारे कारण ये हुआ, ये घटना बीती हुई था। तो जो ब्राह्मण है वो सोचता है मेरे कर्मों के अनुसार मुझे एक कर्ज भुगतना चाहिए, तो मैं भुगत लूंगा, उसको दोष दे दूंगा। तो सुदामा ब्राह्मण बहुत ही किसी से गरीब था, एक पति थी, छोटा सा कमरा था रहने के लिए। उसकी पत्नी को पता रहा कि इसका एक बड़ा धनी दोस्त है। तो पत्नी बार बार कहती थी तुम जाके अपने मित्र को क्यों नहीं मिलते। सुदामा ब्राह्मण तो तैयार था मिलने को, उनके मन में भाव था सिर्फ भक्ति का भाव बढ़े। खैर पति के कहने पर सुदामा ब्राह्मण तैयार हो गए द्वारका जाने के लिए। किसको मिलने के लिए? निकलने से पहले पति ने पूछा कुछ भेंट है जो मैं ले जा सकता हूँ मेरे दोस्त के लिए। पत्नी ने देखा घर में तो कुछ था नहीं, पड़ोसियों से चार मुट्ठी क्या चूड़ा जोड़ लिया। सुदामा ब्राह्मण जब द्वारका पहुंचे, द्वारों से निकले, रुक्मिणी के महल में पहुंचे जहाँ के भगवान उपस्थित थे। भगवान ने क्या किया, कैसे स्वागत किया उनका, कैसे स्वागत किया, चरण धोए, उनको बिस्तर में बिठाया, चरण धोए, और फिर वो जल लेकर बातें पड़ा। तो भगवान ने उदाहरण दिया किस प्रकार ब्राह्मण का स्वागत होना चाहिए। उसी प्रकार पीतु महाराज हमें समझा रहे हैं किस प्रकार संतों का स्वागत होना चाहिए। अगर किसी का ये सौभाग्य हो कि उस घर में कोई सन्यासी संत आता है तो बड़े आदर के साथ उनका स्वागत होना चाहिए, चरण धोने से। इसी अध्याय में आगे के श्लोकों में कहा गया है कि जिस घर में संत का स्वागत ना हो वो ये माना जाता है कि इस संत के घर में सांप रह रहे हैं। जैसे कोई पेड़ हो जिसमें सांप हो, जैसे आप देखते हो कई घरों में बिल्कुल भक्तों का स्वागत नहीं होता, कुत्ते हुए घर से आसाइन बिहेर और डॉग्स, और वो भक्तों को अंदर आने नहीं देते। तो धनी लोग हैं सोचते हैं ये हमारी इच्छा। तो भगवत में कहा गया है जिस घर में संत का स्वागत ना हो ऐसे माना जाता है कि उस घर में सांप रहे। तो पितृ महाराज क्या हमें उदाहरण दिया है इस प्रकार संत का स्वागत होना चाहिए। और शास्त्र में शापा जी अनेक महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा करते हैं। शापा जी कहते हैं कि जो बची व्यक्ति है उसका आकर्षण रहता है सदा इंद्रिय तृप्ति के कार्य के प्रति, और नेत्रों द्वारा क्या इच्छा रहती है, नेत्रों द्वारा इच्छा रहती है कि हम किसी गंदी तस्वीर को देखें जो बहुत ही बड़ी व्यक्ति है, उसका ये भाव रहता है कि जो अनेक इंजीनियर है उनका उपयोग किया जाए। महाराज अम्बरीश का उदाहरण आप पढ़ते हो किस प्रकार हमें मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए। ये नेत्रों द्वारा आप गरीब तस्वीरें देख सकते हो, जैसे आजकल स्मार्टफोन है सबके पास है, कितने मतलब स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन का लाभ भी है, स्मार्टफोन में आप द्वापर जी के सारे ग्रंथों को बिठा सकते हो। किसने सोचा था एक दिन आएगा जब आप द्वापर के सारे ग्रंथों को अपने जेब में उठा सकोगे। अरे किसने सोचा था द्वापर के ग्रंथों को अगर उठाना है तो आपके 20 बॉक्स चाहिए आपको। आज अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप सारी किताबों को अपनी जेब में उठा रहे हैं। आज मैंने देखा मेरे अपने कमरे का कहना बैठा वो बोर्ड 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 में श्लोक लिखते ही नहीं, जैसे ही श्लोक नंबर बोला जाता है अरे बस स्मार्टफोन में हो अपने लिए कंप्यूटर से वो फोन पर ले आते हैं नंबर। बच्ची दिनान जी कहते थे बहुत ही बड़ी व्यक्ति टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं इंडिया तृप्ति के लिए, हर किसी का उपयोग करता है भगवान के सेवा में। तो हम स्मार्टफोन द्वारा आप पापा जी ग्रंथों को बिठा सकते हो, आप अनेक मंदिरों की मूर्तियों का दर्शन प्राप्त कर सकते हो। अजेश्वर के कई मंदिर हैं जिनका आप रोज दर्शन प्राप्त कर सकते हो इंटरनेट के द्वारा। ये तो है स्मार्टफोन का सदुपयोग। तो अगर आप चाहो तो ऐसे बॉडी बॉडी भी अच्छी करते हैं, कभी कभी भक्ति गलती करते हैं, आप इस स्मार्टफोन में गंदी तस्वीरें भी दिखा सकते हैं, फोनोग्राफी भी कर सकते हैं, तो कई लोग करते हैं। इसलिए कई मंदिरों ने सेल फोन का उपयोग बंद कर दिया है क्योंकि ये टेलीफोन जो है एक रूप से सुविधा देती है, दूसरे रूप से आपको और गहराई से मंदिर में भी घुसा सकती है। तो जो भक्त है वो नेत्रों का उपयोग कभी तस्वीरों को देखने में नहीं करते, वो नेत्रों का उपयोग करते किसके नेत्रों के द्वारा भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त करने के। तो जो कान है जीव है, जीव का आप दुरुपयोग कर सकते हैं सदुपयोग कर सकते हैं। तो जिस गांधी जी ने कहा है They're all in a straight line. Being paid genitals, a silly line. अगर आप जीव को वश में रखोगे तो दूसरी इंद्रियों को वश में रखने ज्यादा सरल होगा। अगर आप जीव को वश में नहीं रखोगे तो दूसरी इंद्रियों को वश में रखना कठिन है। इसके लिए जीव का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है उन भक्तों के लिए जो आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं। जीव द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का और कृष्ण प्रसाद को करें। भगवान गीता में कहते हैं जो व्यक्ति मुझे भोग लगाए बिना खाए वो क्या खा रहा है। तो हमारा नियम ये होना चाहिए खाएंगे तो कृष्ण प्रसाद, और कृष्ण प्रसाद जितना खाना है खाओ। हम ये नहीं कहते ध्रुव महाराज की नकल करो। ध्रुव महाराज जब जंगल में गए थे भगवान जब खोजने के लिए उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की। पहले महीने हर तीसरे दिन क्या फल जो बंदर खाते पहले महीने हर छठे दिन सुखा था, तीसरे महीने कुछ सब बंदर वहां वास्तव में देवकी की इच्छा थी कि परम भगवान विपत्ति के रूप में प्राप्त हो। तो देवताओं के 12,000 सालों के लिए हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटों के बराबर होते हैं। देवताओं के 12,000 सालों के लिए वासुदेव देवकी ने कुछ नहीं खाया। क्या खाया? केवल पत्ते जो पेड़ों से गिरते थे। तो हम ये नहीं कह रहे आप तो यदि सिर्फ पत्ते खा रहे जो पेड़ों से गिरते थे, अब तो पेड़ है ही नहीं। ये हमारे लालची व्यापारियों ने वृंदावन के सारे पेड़ लगभग काट दिए थे। जब हम लोग वर्ण बनाए थे व्यापार जी ने स्पष्ट कहा कमाल के पेड़ में बिल्कुल जब गोस्वामी थे वो अलग अलग वृक्ष के लिए सोचते थे, सो पाते थे कि ये पेड़ थे इतने सोचे कि आप अलग अलग पेड़ों के नीचे सो जाए पेड़ खोल जाए कठिन जाएगा। तो भाव तो भाव क्या कृष्ण प्रसन्न था गुरुजी ने क्या था सिंगिंग डांसिंग स्पीचिंग कीर्तन करो। कीर्तन करने के बाद नाचो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बहुत बड़ा कीर्तन कर रहे थे। सेवा चरण में उन्होंने कीर्तन शुरू किया था। पहले दिन 8-9 घंटे के लिए एक साथ कीर्तन हुआ। फिर भक्त ने कहा हमें भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए चाहिए। इसलिए महाप्रभु ने अपनी एक और दिव्य लीला प्रकट की। जाम का बीज बोया जो मिनटों में एक बड़ा पेड़ बन गया। और उस पेड़ से 200 पके हुए आम तुरंत ही प्राप्त हो गए तुरंत। और ये जो आम थे उन्हें ज्यादा छिलका था न हड्डी बिल्कुल मीठे। वह एक आम इतना भारी था एक आम खाने से पेट भर जाना। भक्त ने कीर्तन किया तो नाचा और नाचने के बाद क्या भक्तों को भूख लगी। भक्तों ने कहा हमें भूख लगी है कुछ खाने के लिए दीजिए। महाप्रभु ने एक और अभ्यासी चमत्कार प्रकट किया। एक मिनट में ही वो पेड़ से 200 आम निकले। एक साल के लिए रोज लंबे कीर्तन के बाद वो पेड़ 200 आम देगा। तो हमें योग के द्वारा भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए। योग के द्वारा क्या करना चाहिए? भगवान के नामों का उच्चारण। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम हलो न सेवा न सेवा हरे के नाम हरे के नाम हरे के नाम। भगवद गीता में भगवान जीव है और मन की तपस्या की चर्चा करते हैं। भगवान समझाते हैं शरीर की क्या तपस्या है, जीव की क्या तपस्या है और मन की क्या तपस्या है। तो जीव की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं जीव के द्वारा सत्य का उच्चारण करो। किसका? झूठ का नहीं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है कलयुग में। कलयुग में दक्षिणान से लोगों का झूठ बोलो पर सत्य नहीं। अगर हम धर्म की भी चर्चा करेंगे धर्म की व्याख्या भी अपने मन के अनुसार। प्रभुपाद जी ने जब भगवद गीता प्रकाशित की उन्होंने किस नाम से प्रकाशित की? भगवद गीता के नाम। तो कई लोग पूछते हैं भक्तों से आपकी यथारूप और दूसरे ग्रंथों में क्या अंतर? तो प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं भूमिका में और बाबा जी कहते हैं कि उन्होंने उसी विचारधारा से संदेश को प्रस्तुत किया है, जिस भाव से भगवान ने दिया और अर्जुन ने स्वीकार किया। और ये भगवद्गीता यथारूप अनुमान 70 से अधिक भाषाओं में हो गया है। सारे विश्व में लोग इस गीता को पढ़कर भगवान विश्व में गत हो रहे हैं। तो जीव द्वारा सत्य का उच्चारण करो, इसका ये अर्थ भी है कि जब आप शास्त्रों का वर्णन करो तो शास्त्रों का सत्य संदेश दो, यानी मेरे ख्याल से हमारे विचार से ऐसे होना चाहिए। तो जीव के द्वारा सत्य का उच्चारण करो पर मिठास के साथ, जैसे कि प्रभुपाद जी हर प्रकार के व्यक्ति से मिलते थे, कई उनका अलग से नाम था पर बड़े प्रेम से बात करते थे। हर व्यक्ति कह रहे थे आई मेट अ जेंटलमैन, मैं जेंटलमैन को मिल जा रहा हूँ। तो सत्य विचारण करो पर मिठास के साथ, यानी एक गदा तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं, और प्रेम से करो नहीं तो अच्छी से मोहना है लेकिन स्वीकार करना। तो जीव के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करो, कृष्णा कथा में रुचि लो, जैसे कि भगवतम के दसवें स्कंद में अनेक श्लोक है जहाँ की कृष्णा कथा पर रुचि दी जाती है। ये कहा जाता है कि हमें कृष्णा कथा में रुचि दिलानी चाहिए, परीक्षित मन बड़े ध्यान से भागवतम सुन रहे थे, कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो प्रजाता में रुचि घटेगी, और कृष्ण कथा में रुचि नहीं लोगे तो काम प्रजा पड़ेगी रुचि प्रजाता में। जो प्रभु स्वामी जी कहते हैं अत्या प्रजलपा जो मौका है, प्रजलपा करोगे तो आपकी भक्ति कमजोर हो जाएगी, कृष्ण कथा करोगे तो भक्ति में रुचि बढ़ेगी। हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, रुचि घटे या बढ़े? तो बढ़ने की आप कीमत भरने को तैयार हो? कई बार हमें अंतिम लाभ चाहिए तो मुफ्त में, जैसे कि कई बार कोई राष्ट्रपति या कोई आए विदेश से तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको ऑनरी पीजी डिग्री दे देगी, उनको 5,000 की जरूरत नहीं तो डिग्री दे देगी। पर हम सब सोचे हमें त्याग तो कुछ करना नहीं है पर हमको डिग्री चाहिए और हमें भगवान का धाम चाहिए, ये कैसे संभव है? अगर भगवान का धाम चाहिए तो कीमत भरनी पड़ेगी। भगवान क्या कहते हैं, सर्वा धर्मा पैसा जम अमेरिकन हम धर्म समय प्राप्त मोक्ष चरण में हुआ, सब धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आए, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भगवान ये नहीं कह रहे तुम अपनी बदमाशी करो तो बिना चर्चा के मैं धाम में आऊंगा, कहते भगवान कहते मन मन बाबा मन सकते मन आदमी मन मेरा भक्त बनो मेरा चिंतन करो फिर बिना शंका के कहाँ हो गए मेरे धाम आओगे। तो जीव के द्वारा हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम कृष्ण कथा में रुचि लें और भगवान के नामों का उच्चारण करें। कृष्ण कथा में रुचि लोगे और हरि नाम का उच्चारण करोगे तो क्या लाभ होगा? ठीक तो दर्पण ठीक है, महाप्रभु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया था भक्ति संबंधित ग्रंथों की रचना करने के लिए, तो स्वयं केंद्रीय महाप्रभु हमें केवल 8 श्लोक दे गए जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं। तो फिर उनको पहले श्लोक में क्या कहते हैं, ये तो दर्पण और हरि नाम का उच्चारण और कृष्ण कथा के उच्चारण से एक लाभ यह है, जो काम क्रोध लोभ मोह मन मचर्य का प्रभाव है अनर्था जिसे हम जानते हैं ये नया ये अनर्था दूर हो जाएगा। अगर हम शिक्षा का लाभ उठाएं तो बिना शंका के कल्याण जरूर हो सकती है। अगर हम इससे लाभ नहीं उठाएं तो भौतिक आकर्षण बढ़ते जाएगा। और पिछले कथा और हरि नाम के उच्चारण का एक और लाभ क्या है, एक प्रथम श्लोक में ही हाँ प्रभु क्या कहते हैं, आनंद पूरी वर्जनम, कि अगर आप जीव के द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करोगे, पिछले कथा में रुचि लोगे, तो आप असली आनंद भी अनुभव कर पाओगे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर आप आध्यात्मिक उन्नति के लिए तपस्या का पालन करो उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। भगवान शरदेव जी कहते हैं, सबको दिन ये नहीं सको, हे मेरे बेटे तुम सब तपस्या का पालन करो, इसके लिए भगवान जी खुशी के लिए। ऐसे तो बहुत ही जीवन में तपस्या करने वाले हैं, लोगों को चार चार नौकरी अमेरिका जैसे देश में करनी पड़ती है, ऐसा निकालने के भारत की भाग्य तो वो भी तपस्या है। तीन नौकरी करना आजकल सबसे बड़ी बीमारी ये है कि लोगों को आपको नींद नहीं आती, और बड़ी निर्माण प्रयास है जैसे तो नींद है। एक अमेरिका का एक बड़ा करोड़पति व्यक्ति है, कम वो करोड़पति है, उसके पास सोने के लिए $50,000 का बिस्तरा है। जिस बिस्तरे में वो सोता है वो बिस्तरे की कीमत है $50,000, कितने रुपये हो जाओ, 30 करोड़ रुपये, 2 करोड़ रुपये। तो 2 करोड़ रुपये का बिस्तर आपने सोचा है कभी, सोने आप तो 10 रुपये की चिताई में सोते होंगे। इस व्यक्ति के सोने के लिए 2 करोड़ रुपये का बिस्तर है, तो इस व्यक्ति को बीमारी क्या है, उसको नींद नहीं आती। 2 करोड़ का बिस्तर है तो बीमारी नहीं मिली आती, तो सारी रात पर जागा रहते, तो वो भी तपस्या है। भगवान ने कहते हैं पर तपस्या उठाओ भगवान की खुशी के लिए, फिर उसके बदले में क्या मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आनंद बोली वर्णन, तो हमें हमारे अनेक अंगों का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। और इस विषय में हम सबके समक्ष महाराज अमरीश का बड़ा सुंदर उदाहरण है। अगर हम कहें कि वो तो महाराज अमरीश थे, हम महाराज अमरीश थोड़ी हैं, हम तो कलियुग की प्रजा है, वाले का संभव होगा, संभव बेशक नहीं हो तो प्रयास करने से हो सकता है। जब हम शास्त्रों में महान संतों का उदाहरण पढ़ते हैं तो उसका यह अर्थ नहीं कि आप पढ़ते ही उनके समान बन जाओगे, तो कम से कम उनके विषय में पढ़कर ये आप लक्ष्य रख सकते हो कि हम ही उस मंजिल पर पहुंचे। और प्रयास करने को भगवान गीता में क्या कहते हैं, तो प्रयास करते हैं मुझे प्रसन्न करते हैं, उन्हें कुछ कमी भी हो तो उसे मैं क्या करता हूँ, तो चाचार्य प्रभु ये भी कह रहे हैं कि चैतन्य महाराज के द्वारा हम ये भी समझते हैं। बाबा जी अंग्रेजी में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, चाचार्य ने उसका उपयोग करते हैं, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। हमें समझ पा रहे हैं कि हिंदू में अच्छा है एक भाव के व्यक्ति एक भाव के व्यक्ति कचारे में पसंद करते हैं। तो प्रभा जी उदाहरण देते हैं श्रावी का, श्रावी अक्सर तय रहता है दूसरे श्रावियों के साथ, जुआरी कहा रहता है बहुत ही वाली व्यक्ति कहाँ रहते हैं दूसरे मित्रों के साथ, और भक्त कहाँ रहते हैं साधु संग, साधु संग लाव मात्र साधु संग लाव मात्र। एक सेकेंड का चौदवा हिस्सा के लिए भी अगर आपको शुद्ध भक्त की संगत प्राप्त हो तो आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए शासन का निर्णय है साधु संग में रहो अगर आप भक्ति के मार्ग में उन्नति करना चाहते हो। चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बड़ी गहराई के साथ शिक्षा दी। सनातन गोस्वामी उनके भाई रूपा के समान नवाब भूपेश जाके नौकरी कर रहे थे। पहले रूपा गोस्वामी ने नौकरी किया थी, उसके पश्चात सनातन गोस्वामी ने किया। सनातन गोस्वामी को जेल में जाना पड़ा, पहले तो एक महीने के वो दफ्तर नहीं आए। राजे ने कहा भाई रूपा भी लापरवाह था, नौकरी त्याग दी, अब ये भी नहीं आना काम करने, शासन कौन संभालेगा। राजा ने जाना था उड़ीसा, वहां के राजा से युद्ध करने दिया। राजा ने अपने डॉक्टर को भेज दिया, जाके देखो सनातन को क्या बीमारी है। आजकल तो अगर कोई आपके घर में आना चाहे तो घंटी बजाता है, तो आप पूछे कौन है, आप नहीं खोलना चाहते तो आप दरवाजा नहीं खोलते, और टेलीफोन का जवाब देने से पहले देखते हो कौन फोन कर रहा है, कोई कर्जा है, कर्जा लेने वाला तो नहीं कर रहा है, कर्जा लेने वाला तो आप जवाब नहीं देते। तो उन दिन में ये सुविधा नहीं थी, तो वही के सीधा अंदर पहुंच गया। उन्होंने देखा सनातन गोस्वामी 30 ब्राह्मणों के साथ बैठकर श्रीमद् भागवतम चारों ओर कमरे में पड़े थे, अध्ययन करे, दिव्य चर्चा कर रहे। वैद्य ने राजा को कहा सनातन का विश्वास बिल्कुल ठीक है, वो तो भागवतम पढ़ रहे पंडितों के साथ। राजा ने उन्हें बुलाया, सनातन राजा के पास पहुंचे, उन्होंने राजा को प्रणाम किया। राजा ने कहा मैं आप उड़ीसा जाना चाहता था, वहां भी आओ अभी नौकरी से बना लो। सनातन ने क्या कहा मेरी तो कोई रुचि नहीं। राजा ने उन्हें जेल में डाल दिया, जेल से निकले बड़े मुश्किल से, कैसे निकले बड़ी सफर बोलने से डर लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को भक्ति के विषय में अनेक नियमों की चर्चा की, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा इन सब में पांच सबसे महत्वपूर्ण है। इन पांच में सबसे पहले क्या था, साधु संग, साधु संग नामक कीर्तन, भागवतम श्रवणम, भगवान के आचरण विज्ञा की उपासना सदा से, और धामधाम रह रहे हो प्रातः के सब कुछ है बॉम्बे दिल्ली सब छोड़कर भेजा हो जाने लगता, और फिर सब यहाँ आ जाएंगे तो प्रचार कौन करेगा, अपने घर में धाम जमा करेगा। तो सबसे पहले था साधु संग, तो साधु संगत में रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साधु संगत में हम रहे तो विनम्रता के भाव से रहना चाहिए, और साधु संग में रहोगे तो सदा आध्यात्मिक संदेश सुनते रहोगे। तो साधु को केवल हम वस्त्रों से नहीं पहचानते, नहीं सैफरन कपड़े उसे पहने हुए हैं, माला है हाथ में, ये तो सर्व अच्छा महत्व होगा। साधु का आचरण भी शुद्ध होना चाहिए, उसका आचरण भी शास्त्र पर आधारित होना चाहिए, नहीं मुंह में राम राम आगे क्या और अगर वही छोड़ी नहीं राम और बनने को छोड़ दें। एक समय एक स्थान में दो व्यक्ति थे, एक था ब्राह्मण और उसी घर के सामने एक है वैश्य का घर। ब्राह्मण बनाने में बैठा था, शास्त्र को खुला कर पढ़ ऐसे दिखाता था लोगों को शास्त्र पढ़ रहा हूँ, तो मन में वो सोचते रहता था खोपो व्यक्ति उस वैश्य के घर जा रही है जा रहा है, वैश्य से प्रेम करेगा ये करेगा। वो जो वैश्य थी वो क्या सोच रही थी, मेरे पापों के कारण मैं इस धंधे में जुड़ी हुई हूँ तो भगवान मुझे अगले जीवन में ब्राह्मण जैसे दर्शन दे जन्म दे, मैं भी सदा शास्त्रों को पढ़ सकूँ। जो उस इलाके में आठ बजे क्योंकि दोनों ब्राह्मण और वैश्य दोनों की मृत्यु हो गई, मधु बताए ब्राह्मण के घर चलो नारक में सजा के लिए, ब्राह्मण ने कहा तुम कल पते पड़ा गए हो, तुम तो वैश्य के पास जाना चाहिए, मैं तो हमेशा शास्त्रों का अध्ययन कर रहा था। ब्राह्मण जी ने कहा तुम पखंड कर रहे थे कि अध्ययन कर रहे हो और मन में सोच रहे थे वैश्य के भोग विलास के विषय में, और वैश्य जुड़ी हुई थी गलत कामों में और मन में सोच रही थी क्या मैं ब्राह्मण कब बनूंगी, तो तुम चलो सजा पकड़ने का। तो प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था, तो हमें मन द्वारा भगवान का चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए, भगवान के गुणों का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। तो साधु संग में रहोगे तो सदा दिव्य संदेश प्राप्त करते जाओगे और भक्तों की संगत में रहोगे तो क्या क्या भाव आएगा, बहुत ही तो सत्संग में त्याग है वैष्णव आचार, इसलिए कितने महत्व में कहा बौद्ध वर्ग की संगत त्याग हो, यहाँ कौन से बौद्ध वर्ग की संगत त्यागने से काम कैसे करेगा। आप प्रचार करने जाते हो तो भी भौतिकवादियों को प्रचार करना पड़ता है, आप नौकरी कर रहे हो धंधा कर रहे हो तो भी उनकी संगत में रहना पड़ता है, तो बहुत ही मजे की संगत में उतना ही रहो जितना कि बिल्कुल आवश्यक हो, इससे अधिक नहीं, इससे अधिक समय काटो भक्तों की संगत में, तो जितना सारे संग में रहोगे उतनी तेजी के साथ ज्यादा कर सकोगे। तो पापा जी इतना पहले समझा रहे हैं कि जो भक्त है उनकी इच्छा रहती है कि सदा में भक्तों की संगत में रहो, हम सबसे ये भाव हो जाते हैं कि हम भक्तों की संगत में रहे, और इस विषय में नारद मुनि ने कहा ध्रुव महाराज से तीन प्रकार के संगत आप प्राप्त कर सकते हो, एक है उनकी संगत जो भक्ति में आपसे ज्यादा एडवांस है ज्यादा विमर्श है, दूसरा उनके साथ संगत जो आपके समान है, तीसरा उनकी संगत चाहते हैं उनके भक्ति में आपसे कम ज्ञान रखते हैं। तो आपका क्या व्यवहार होना चाहिए इन परिस्थितियों में, अगर आपका आपको संगत मिले उनके साथ काफी ज्यादा एडवांस है काफी ज्यादा आगे बढ़े तो हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा संदेश सुनोगे जिससे आध्यात्मिक उधार हो सकता है, और अगर आपके संगत हो आपके समान के व्यक्ति हो जाए फिर हमें क्या करना चाहिए, मित्रता का भाव, और जब आप मिलो किसी से जिसका आपसे भक्ति में कम ज्ञान हो तो क्या भाव होना चाहिए, हमें कहीं बनी ना उसमें क्या भाव होना चाहिए दया और संप्रेषण, ये नहीं कि हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ समाज है कितने अच्छे हैं तुम निकम्मे हो मैं अच्छा हूँ, तो इसलिए हमें वहाँ प्रभु जी के संदेश का स्मरण करना चाहिए। वहाँ प्रभु ने क्या कहा, चलो या बीस है हमारी जमाना लेना कहते हमारे में सदा विनम्रता का भाव होना चाहिए, विनम्रता के भाव से और सहनशील होना चाहिए। अगर इस भाव से हम भक्ति में जुड़ेंगे तो बिना चिंता के आप भगवत प्रेम प्राप्त कर सकोगे। तो आज के श्लोक में आप पढ़ रहे हो कि जब पृथ्वी महाराज ने महाराज को देखा रेस करते हुए तुरंत ही उठ गए अपने अधिकारियों के साथ, बड़े आदर के साथ उन्होंने क्या किया, उनका स्वागत किया और हमें शिक्षा दी है कि इस प्रकार हमें संतों का स्वागत करना चाहिए। ये होना चाहिए हमारा भाव। हरे कृष्ण। प्रसाद इधर खाते हैं उधर खाते हैं। ओके, एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। तो आप सर एग्रीमेंट में हो जो बोला था? हाँ, क्या करना चाहिए, हमें कितने रुचि बनानी चाहिए? किसका कथा और किसका नाम तो कैसे बढ़ाओगे? प्रयास करने से या बिना प्रयास के? इनमें से कहते हैं गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, भगवान उनका सहयोग देते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। ओके, हरे कृष्ण।